नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई की। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल का गठन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों और संस्थानों के प्रमुखों को लिखा पत्र। भारत और मलेशिया ने आयुर्वेद, पारंपरिक औषधियों और डिजिटल प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों पर किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। सरकार ने नौकरशाही में लेटरल एंट्री के विज्ञापन को रद्द करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को लिखा पत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्राकृतिक आपदाओं में जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए देश के पूर्वानुमान प्रणाली को सरल और सटीक बनाने की आवश्यकता पर दिया बल। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी, 18 सितंबर को होगा मतदान। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कोलकाता के अस्पताल में एक डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान कार्यबल से 3 सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदालत देश भर से डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय कार्यबल सृजित कर रही है। ये कार्यबल ऐसे दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगा जो पूरे देश में लागू होंगे। देश भर के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के असुरक्षित कामकाजी माहौल पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायालय ने कहा कि वर्तमान कानून डॉक्टरों की संस्थानिक सुरक्षा को सही प्रकार से व्यक्त नहीं करते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसने वर्गीकृत मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल में एक डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायालय ने कहा कि देश जमीनी बदलाव के लिए एक और दुष्कर्म तथा हत्या का इंतजार नहीं कर सकता। न्यायालय की खंडपीठ ने यह भी उल्लेख किया कि महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपने कानून तैयार किए हैं। हालांकि इन कानूनों में संस्थागत सुरक्षा मानकों की कमी का उल्लेख नहीं किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों और संस्थानों के सभी प्रमुखों को पत्र लिखा है। इस पत्र में मंत्रालय ने प्रवेश, निकासी, गलियारे तथा संवेदनशील क्षेत्रों सहित प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच झारखंड में जूनियर डॉक्टरों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण राज्यभर में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई हैं। अब तक 10,000 से अधिक मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल रहा है। इस दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की झारखंड शाखा के सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित तौर पर उसके कार्यालय से कोलकाता में आरजी कर अस्पताल में एक डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की जांच से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित एक फर्जी पत्र के बारे में लोगों को आगाह किया है। सीबीआई ने पत्र और उसकी सामग्री को फर्जी बताया है। इसमें एक सीबीआई अधिकारी के नाम का उल्लेख है जो मामले की जांच वापस लेने की मांग कर रहा है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि सीबीआई में ऐसा कोई अधिकारी काम नहीं करता है और लोगों से इस पत्र के झांसे में न आने का आग्रह किया गया है। भारत और मलेशिया ने श्रम और रोजगार, आयुर्वेद और परंपरागत औषधि, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन और युवा कार्यक्रम और खेल सहयोग के क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने जन प्रशासन, प्रशासनिक सुधार और आपसी सहयोग के क्षेत्र में भी समझौतों का आदान प्रदान किया। इन समझौतों पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरि अनवर बिन इब्राहिम के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत तथा मलेशिया ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। श्री मोदी ने कहा कि शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों पक्षों में आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों में व्यापक चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत तथा मलेशिया के बीच आर्थिक सहयोग के लिए अपनी भी प्रचुर संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने फिनटेक, सेमीकंडक्टर, रक्षा उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष मलेशिया के पेनेट के साथ भारत की यूपीआई को जोड़ने पर भी काम करेंगे। इस अवसर पर मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरि अनवर बिन इब्राहिम ने कहा कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों पक्षों को और संभावना तलाशने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, भारत एक समृद्ध इतिहास, संस्कृति और सभ्यता वाला एक महान राष्ट्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव तन्मय लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पोलैंड में भी श्री मोदी वहां के प्रधानमंत्री डोनाल्ड लुस्क और राष्ट्रपति अंद्रेज दुदा से मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर शुक्रवार को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी को यूक्रेन यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि राजनयिक संबंध स्थापित होने के 30 से अधिक वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा हो रही है। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आज शाम नई दिल्ली में होगी। इस अवसर पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और जापान की ओर से वहां के रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकावा बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान दोनों देशों के रक्षा मंत्री द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में यूपीएससी ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिव निदेशक और उप सचिवों को नियुक्त करने से संबंधित एक विज्ञापन जारी किया था। विपक्षी पार्टियों ने इस विज्ञापन पर प्रश्न उठाए थे। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन को लिखे पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया संविधान में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों विशेषकर आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण सरकार के सामाजिक न्याय ढांचे का एक महत्वपूर्ण भाग है। श्री सिंह ने यह भी कहा कि सामाजिक न्याय के प्रति संवैधानिक अधिदेश का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में वंचित समुदाय के योग्य उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृतकों की संख्या कम करने के लिए देश की पूर्वानुमान प्रणाली को सरल और अधिक सटीक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में आज राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सभी भूस्खलन संभावित राज्यों में पूर्व चेतावनी देने वाले बुलेटिन जारी करने के लिए राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र कोलकाता में स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए खनिज उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने 12 श्रेणियों में 21 भू वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। 1966 में खनन मंत्रालय द्वारा स्थापित भू विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्राचीन और अत्यधिक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य भू विज्ञान, खनिज अनुसंधान और अन्वेषण, खनन प्रौद्योगिकी तथा खनिज के लाभ और मौलिक भू विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों तथा महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों के दल और एक व्यक्ति को सम्मानित करना है। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में पुलवामा, अनंतनाग, शोपिया, कुलग्राम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होगा। उम्मीदवार 27 अगस्त तक नामांकन पत्र भर सकते हैं और 28 अगस्त को पर्ची की जांच की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में 60 उचित मूल्य दुकानों को जन पोषण केंद्रों में बदलने के प्रायोगिक कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि यह जन पोषण केंद्र उचित मूल्य दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी में मदद करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने उचित मूल्य दुकानदारों के आसानी से कर्ज लेने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नई दिल्ली में वीरभूमि जाकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। रूस ने कहा कि यूक्रेनी सेना की आक्रामक कार्रवाई के बीच कुर्स्क क्षेत्र के 9 सीमावर्ती जिलों से 1,20,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित रूप से हटा दिया गया है। रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने कहा कि निकासी कार्रवाई अभी भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रूस की कार्रवाई के बीच लोगों को प्रमुख शहर पोक्रोवस्क छोड़ने का आदेश दिया है। पोक्रोवस्क यूक्रेन के मुख्य रक्षात्मक किलों में से एक है और डोनेट्स्क क्षेत्र में एक प्रमुख रसद केंद्र है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कदाचार को रोकने और निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए नए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह नियम ऋण देने और लेने वाली इकाइयों को ऋण से संबंधित वृद्धि आश्वासन देने की पेशकश करने से रोकते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा हुई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आरके जैनमण ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने आज के लिए हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।